अध्याय 13 बेतेल की वेदी को ईश्वर का अभिशाप। जब 8वें महीने के 15वें दिन, जिस दिन को उसने स्वयं निर्धारित किया था, बेतेल की वेदी की ओर चढ़ा, उसने इसराइलियों के लिए इस पर्व का प्रवर्तन किया। वो धूप चढ़ाने के लिए वेदी की ओर बढ़ा। जब यरोबाम वेदी के निकट खड़ा होकर धूप चढ़ा रहा था, तो प्रभु का भेजा हुआ एक ईश्वर भक्त यूदा से बेतेल आया। उसने प्रभु की आज्ञा से वेदी के विरोध में ऊंचे स्वर से कहा, वेदी वेदी, प्रभु ये कहता है, देख, दाऊद के घराने में योशिया नाम का एक पुत्र पैदा होगा। वो तुझ पर पहाड़ी पूजा स्थानों के उन याजकों की बलि चढ़ाएगा जो तुझ पर धूप चढ़ाते हैं। तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। ईश्वर भक्त ने उसी दिन ये कहते हुए एक चिन्ह दिया, प्रभु का बताया हुआ चिन्ह यह है, देखो, वेदी फूट जाएगी, उस पर रखी हुई चर्बी फैल जाएगी। जब राजा ने ये शब्द सुने जो उस ईश्वर भक्त ने बेतेल की वेदी के विरुद्ध कहे थे, तो यरोबाम ने वेदी के निकट से हाथ उठाकर संकेत करते हुए आज्ञा दी, उसे पकड़ लो। लेकिन वो हाथ अकड़ गया जिसे उसने उसके विरुद्ध बढ़ाया था, और वो उसे अपनी ओर नहीं मोड़ सका। वेदी फट गई और वेदी पर रखी हुई चर्बी फैल गई, जैसा प्रभु की आज्ञा से प्रेरित ईश्वर भक्त ने संकेत दिया था। अब राजा ईश्वर भक्त से निवेदन करने लगा, प्रभु अपने ईश्वर को शांत करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, जिससे मेरा हाथ फिर पहले जैसा हो जाए। इस पर ईश्वर भक्त ने प्रभु से प्रार्थना की और राजा का हाथ अच्छा हो गया। अब वो फिर पहले जैसा हो गया। अब राजा ने ईश्वर भक्त से कहा, मेरे साथ घर आकर भोजन करो, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। लेकिन ईश्वर भक्त ने राजा को उत्तर दिया, यदि आप मुझे अपना आधा महल भी दे दें, तो भी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और न वहां खाऊंगा पीऊंगा, क्योंकि प्रभु की वाणी द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि तुम न तो खाओगे न पियोगे और न उस मार्ग से लौटोगे जिस पर से तुम चलकर आए हो। इसके बाद वो दूसरे मार्ग से चला गया। वो जिस मार्ग से बेतेल आया था उससे नहीं लौटा। ईश्वर भक्त और बेतेल का नबी। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। उसके बेटों ने घर लौटकर उसे वो सब बताया जो ईश्वर भक्त ने उस दिन बेतेल में किया और राजा से कहा था। जब उन्होंने अपने पिता को इस प्रकार बताया, तब उनके पिता ने उनसे पूछा, वो किस रास्ते से गया है? पुत्रों ने उसे यूदा से आए ईश्वर भक्त के जाने का मार्ग बताया। इस पर उसने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, मेरे लिए गधा कसो। गधे के कसे जाने पर वो उस पर सवार हुआ और ईश्वर भक्त के पीछे चल पड़ा। उसने उसे बलूत वृक्ष के नीचे बैठा पाया। वो उससे पूछने लगा, क्या यूदा से आए ईश्वर भक्त तुम ही हो? उसने उत्तर दिया, हां, मैं ही हूं। तब वो उससे बोला, भोजन करने मेरे साथ मेरे घर चलो। किंतु उसने उत्तर दिया, मैं न तो लौट सकता हूं न तुम्हारे साथ चल सकता। मैं तुम्हारे साथ वहां न तो भोजन करूंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि प्रभु की वाणी द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है कि तुम न वहां खाना न पीना और न उस मार्ग से लौटना जिस पर से चलकर तुम वहां गए हो। उसने उत्तर दिया, तुम्हारी तरह मैं भी एक नबी हूं। प्रभु की आज्ञा से एक दूत ने मुझसे कहा है कि उसे अपने यहां ले जाओ जिससे वो कुछ खा पी सके। वो उससे इस प्रकार झूठ बोला। तब वह उसके साथ गया और उसके यहां खाया पिया। वे भोजन करने बैठ ही रहे थे कि प्रभु की वाणी उस नबी को सुनाई पड़ी जिसे वो ले आया था। उसने यूदा से आए ईश्वर भक्त से कहा, प्रभु का कहना है, तुमने प्रभु की वाणी की अवहेलना की और उस आज्ञा का पालन नहीं किया जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें दी थी, बल्कि लौटकर तुमने उसी स्थान पर खाया पिया जहां मैंने तुम्हें खाने पीने को मना किया था, इसलिए तुम्हारा शव तुम्हारे पूर्वजों के समाधि स्थान में नहीं दफनाया जाएगा। ईश्वर भक्त के खाने पीने के बाद वृद्ध नबी ने उस नबी का गधा कसवाया जिसे वो लौटा कर लाया था। फिर वो चला गया। रास्ते में उसे एक सिंह मिला जिसने उसे मार डाला। उसकी लाश रास्ते में पड़ी रही। गधा पास ही खड़ा रहा। वो सिंह भी लाश के पास खड़ा रहा। पास से निकलने वाले लोगों ने जब मृतक को मार्ग पर पड़ा हुआ और लाश के पास सिंह को खड़ा देखा तो उन्होंने जाकर नगर में रहने वाले बूढ़े नबी को इसकी सूचना दी। उस नबी ने जिसने उसे लौटाया था ये सुनकर कहा, ये वही ईश्वर भक्त है जिसने प्रभु की वाणी की अवहेलना की है, इसलिए प्रभु ने उस सिंह को उस पर छोड़ दिया और उसने उस पर टूटकर उसे मार डाला, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु ने उससे कहा था। इस पर उसने अपने पुत्रों को अपने लिए गधा कसने की आज्ञा दी। उन्होंने गधा कस दिया। तब उसने वहां जाकर मृतक को मार्ग पर पड़ा हुआ तथा गधे और सिंह को लाश के पास खड़ा पाया। सिंह ने न तो शव खाया था और न गधे को फाड़कर मारा था। ईश्वर भक्त का शव उठाकर और उसे गधे पर रखकर वो नबी उसे नगर में ले आया जिससे वो शोक मनाए और उसे दफना दे। उसने मृतक को अपनी ही कब्र में दफनाया और उस पर शोक मनाते हुए कहा, हाय मेरे भाई। उसे दफनाने के बाद उसने अपने पुत्रों से कहा, मेरे मरने पर तुम मुझे भी इसी कब्र में रखोगे जिसमें ईश्वर भक्त दफनाया गया है। तुम उसकी हड्डियों के पास ही मेरी भी हड्डियां रखोगे, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा से जो संदेश बेतेल की वेदी और समारिया के नगरों के पहाड़ी पूजा स्थानों पर बने सब मंदिरों के विरुद्ध दिया था वो अवश्य पूर्ण होगा। फिर भी यरोबाम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। वो पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था यरोबाम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबाम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है।